तस्मात् यस्य महाबाहो तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसः निगृहीतानि सर्वसः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य। अच्छा, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः अच्छा के लिखे थे श्लोक का बोर्डे। हाँ अच्छा बेटा ठीक है, मतलब ये जब हम पाठ करेंगे ऐसे होगा। इन तीसरी लाइन जो है इंद्रियान इंद्रियार्थे इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्यः ये सा हसंत होगा और उसके बाद तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित प्रज्ञा प्रतिष्ठित तस्मद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसः इन्द्रियानिन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तो पहला लाइन का पहला शब्द क्या है? वेरी गुड, तुम बताओ। इंद्रियार्थेभ्यः प्रज्ञा प्रज्ञा वेरी गुड। पलक क्या कोशिश करेगा? तुम भी बताओ, शर्माने की कोई बात? पहला शब्द क्या है पहला लाइन का? तस्माद तस्माद यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसः इन्द्रियानिन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अच्छा, बच्चे में से और कौन बोल सकेंगे? तुमको कंठस्थ हो गए, बहुत अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? विपुल राठौर। बहुत अच्छा विपुल, तुम कहाँ रहते हो? महानंदा नगर में। अच्छा, नजदीक ही। तुम आते हो हर रोज शाम को? आना ठीक है। कितनी दूर है तुम्हारे घर यहाँ से? बैठ बैठ के बोल। लास्ट मकान है। ओके ठीक है, तो नजदीक ही है। बहुत अच्छा, हरे कृष्ण। और तुम्हारा पिता माता भी आते हैं? आए हैं? आज नहीं है, कल आया था। अच्छा, कल बुलाना उनको, बोला कि महाराज बोले हैं आपको आने। ठीक है, अच्छा बहुत अच्छा। तुम लोग कोशिश करोगे? तुम्हारा कंठस्थ हुआ है? नहीं हुआ? अच्छा ठीक, तो कोशिश करते रहना। कोशिश करते करने से ये आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तस्माद शब्द का अर्थ क्या है? अतः, अतः यस्य तस्माद यस्य, ये दो शब्द संधि होकर क्या हुआ? बताइए क्या हुआ? तस्माद यस्य, तस्माद और यस्य, तस्माद यस्य महाबाहो। महाबाहो का मतलब है हे महावीर। कौन है महावीर? अर्जुन। कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं। तस्माद यस्य महाबाहो, हे अर्जुन, निगृहीतानि, निगृहीतानि मतलब वशीभूत करके, इस तरह वशीभूत, निग्रह मतलब दबाना, दमन करना, मतलब वश में लाना, किसको? इंद्रियानि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों को वशीभूत करके, इंद्रिय विषय से, इंद्रिय विषय से तस्य मतलब उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर। ये आपको अब याद है ना कि किस विषय में विचार हो रहा है यहां? अर्जुन का प्रश्न क्या था भगवान के सामने? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थित नहीं, स्थित थी किं प्रभाषित किमाशीत ब्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ कैसे बोलते हैं, समाधिस्थस्य केशव, और उनका मन का चिंतन कहां पर स्थिर होता है? समाधिस्थ होता है, समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किं प्रभाष्यते किमाशीत ब्रजेत किम। उसका विचार कैसा है, वो बैठते कैसे हैं और चलते कैसे हैं, किम आसीत ब्रजेत किम, यह प्रश्न किया था। तो इस प्रश्न का जवाब भगवान दे रहे हैं। राजा
मनोगत
वेरी गुड। तुलसीराम जी गोस्वामी हैं। गोस्वामी का मतलब इंद्रिय का स्वामी। तो ये स्थित प्रज्ञ का, स्थित प्रज्ञ का क्या वर्णन है, उसका क्या गुण है, इसका विचार उनको बहुत सही रूप से मालूम है। बहुत धन्यवाद। तो इस श्लोक में भी उसका ही विचार हो रहा है ना, जैसे कि तस्माद यस्य महाबाहो, भगवान क्या कह रहे हैं, हे महा, अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषय से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। ऐसे हम लोग का, ऐसे हम आम आदमी का क्या होता है, कैसे हो, क्या हमारा इंद्रिया का आचरण कैसा होता है, हमारा इंद्रिया का कार्य कैसे होता है? याद है भगवान क्या बोला था, धायते विषयान पुरुष संगस्ते सुपजायते संज्ञा संजायते कामो कामात क्रोध भी जायते क्रोधात भवति सन्मोह सन्मोहात स्मृति विभ्रम स्थिति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो हमारा इंद्रिय क्या होता है, ध्वायते विषयान पुरुष। विषय, विषय का मतलब क्या है पाडुल, तुमको मालूम है विषय का मतलब क्या है? विषय का मतलब है इंद्रिया का विषय, ऑब्जेक्ट्स। विषय का अर्थ है ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंस, इंद्रिया का विषय। कैसा इंद्रिय का विषय क्या कैसा होता है, कौन कौन है? का पांच इंद्रिया है, वो क्या है? आंखें, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। और इसका विषय भी क्या है? रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। आंखें क्या देखता है? रूप को देखता है। कान शब्द को ग्रहण करता है। नाक घ्राण को ग्रहण करता है। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की, श्री श्री गौमिताय की। नाक भी घ्राण ग्रहण लेते हैं और त्वचा स्पर्श और जिह्वा रस। तो ये पांच इंद्रिय का पांच विषय है। तो ऐसे क्या होता है, हमारे इंद्रिया विषय के ओर भागता है ना, कुछ देखता है, देखने में अगर वो बहुत मनोरम होता है, मन को वो प्रभावित करता है, सुंदर वस्तु मन को, सुंदर रूप मन को प्रभावित करता है, तब क्या होता है, आंखों के द्वारा मन कहां चलता, कहां जाता है उस दृश्य की प्रति और या रूप की प्रति। वैसे ही शब्द के प्रति कान, मतलब कान, ये जो पांच इंद्रिया हैं, आंखें, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, इसके माध्यम मन वो विषय के प्रति हमारा चेतना को लेकर जाता है। चेतना हमारा जो, हमारा चेतना जो है वो चेतना ही हमारा, जहां पर हमारा चेतना रहेगा वहां पर हम रहते हैं। और चेतना का प्रभाव कैसे होता है, मन के द्वारा होता है। तो और मन इंद्रिय के माध्यम उस विषय के प्रति चेतना को ले जाता है। और चेतना कहां से आता है, चेतना को उत्पत्ति कहां, चेतना कहां से आता है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा, चेतना आता है आत्मा से। और आत्मा कौन है? आत्मा हम है, हाँ, परमात्मा का दास है, परमात्मा का अंश है। हाँ, बहुत अच्छा। और हम सब क्या है? तो हम आत्मा है। तो इस विचार से आप बोले हैं, तो हम आत्मा क्या है? भगवान का दास है। तो हम सब भगवान का दास है। परंतु जब तक हम भगवान को दास का जो कार्य वृत्ति इसको ग्रहण नहीं करता है, तब तक हमारा तकलीफ होता है, तब तक हमारा, हमको हमारा मुश्किल होता है, कठिनाई दिखाई देती है, जो हम सबको इस भौतिक जगत में मिल रहा है। क्यों? अगर नौकर मालिक का नौकरी छोड़ दिया तो नौकर का हाल कैसा होगा? मुश्किल होगा नौकर का, है ना? और नौकर अगर मालिक का सेवा में लग जाता है तो उसका कोई चिंता रहता है नहीं? वो मालिक का सेवा करता है। मालिक अगर बहुत अमीर है तो नौकर का भी बहुत सुख सुविधा मिलता है। तो हम सब भगवान के नौकर हैं, दास हैं। जब तक हम भगवान को सेवा नहीं करते हैं, भगवान को दास होते हुए भी भगवान का नौकरी नहीं करते हैं, तब तक हमें कठिनाई दिखाई देती रहती है, मुश्किल होता है। और जब हम भगवान को सेवा में लग जाते हैं, भगवान को सेवा करना शुरू करते हैं, तब सारे समस्या का समाधान हो जाता है। यहां आप में से कौन कौन भगवान का दास बने हैं, हाथ उठाइए, दास और दासी। तो भगवान का दास और दासी बनने से कुछ फायदा हुआ है? हाँ, क्या फायदा हुआ है माता जी, आप बताइए। हाँ, क्या हुआ है? शांति। देखिए, नौकर का शांति हर समय नहीं मिलता है, परंतु सुख मिलता है, आनंद मिलता है। क्योंकि जब नौकरी करते हैं, मालिक का सेवा करने में बहुत सारे कठिनाई आती है, पर फिर भी वो कठिनाई होते हुए भी हम उनको सेवा करते हैं। और मालिक जब प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है, हमारा प्रमोशन होता है, इनाम मिलता है, पैसा भी मिलता है। तो वैसे जब हम भगवान को सेवा करते हैं, देखिए भगवान जैसा मालिक कहां मिलेगा, जो सारे संसार के मालिक हैं, जो सारे संसार को पालन कर रहे हैं, और जो सर्वव्याप्त है और जो अंतर्यामी है, जो हमारे सब कुछ जानते हैं, हमारे हम कौन हैं, हमें क्या चाहना है, हमें क्या जरूरत है, हमारा क्या दिक्कत है, ये जो जिन पूरे उनके पूरे रूप से पूर्ण रूप से उनको इस विषय में उनको मालूम है। तो उसके कारण भगवान हरे कृष्ण सुधर महाराज, तो उसके कारण भगवान जब देख, भगवान को सब कुछ पता है और भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। और जब हम भगवान को सेवा करना ही हमारा एकमात्र कार्य स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारा जिंदगी में और हमारा सारे कार्य में कभी क्या कोई अभाव हो सकता है? नहीं। अगर हम केवल भगवान के लिए ही सब कुछ करना चाहते हैं तो भगवान देंगे। ऐसे कोई बहुत अमीर व्यक्ति का कोई नौकर अपना प्रभु का, अपना मालिक का सेवा करना चाहते हैं, और उनको अगर पता है कि वो उनका सेवा के लिए क्या चाहते हैं, जैसे उनका घर सजाने के लिए, उनका खाना पकाने के लिए सब कुछ करने चाहते हैं, तो उसका जो कुछ प्रयोजन होता है वो क्या मिलेगा? जो मालिक देगा या नहीं, जरूर देंगे, है ना। तो वैसे ही जब हम भगवान को सेवा करना शुरू करते हैं और भगवान को सेवा ही हमारा जीवन का असल कार्य के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, और भगवान को सेवा के बजाय, भगवान की सेवा के बिना और कुछ हम नहीं चाहते हैं, तब जो कुछ हम चाहते हैं वो मिल जाता है। ये आप थोड़ा सा विचार करके इसको देखना चाहिए, भगवान को सेवा करने से फायदा क्या होता है। आप सब बोल रहे थे कि भगवान को सेवा, माता जी बोल रहे थे कि शांति, परंतु देखिए शांति तो मामूली बात है। शांति जब अशांति है, जब कठिनाई है, जब कष्ट है, तब शांति एक बहुत बड़ी बात है। परंतु जब शांति भी मिल जाता है, सारे उलझन सारे कठिनाई जब दूर हो जाता है, तब क्या चाहते हैं? तब हम आनंद चाहते हैं। असल में हमारा चाहना है आनंद, परंतु इस भौतिक जगत में उस आनंद की वजह हमें क्या मिल रहा है? आनंद की बजाय हमें क्या मिल रहा है? हमें कठिनाई मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, दुखालयम अश्वाशतम। इस भौतिक जगत एक दुख प्राप्ति के स्थान है। दुख मिल रहा है ना, दुख, किसी को दुख मिला है कभी अब तक? ऐसा कोई है जो जिसको कभी दुख नहीं मिला है? दुख मिलता ही रहता है हर समय, जब तक ना हम भगवान को सेवा में लग जाते हैं। और भगवान को सेवा में अगर लग जाते हैं तो दुख होता है क्या? दुख, और तब दुख नहीं रहता है। भगवान को सेवा में लगने से कठिनाई आ सकती है, उलझन आ सकती है। जैसे भगवान को सेवा, देखिए अर्जुन भगवान को सेवा कर रहे हैं, कैसे अर्जुन को भगवान किस तरह किस रूप से सेवा करने को निर्देश दिया था, किस रूप से सेवा करने का निर्देश दिए थे, याद है ना आपको? किसको याद है? महेश जी, क्या लड़ाई करके उनको सेवा करने का निर्देश दिए थे? हाँ, युद्ध। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। तो भगवान अर्जुन को लड़ाई करने को बोला था, बोले थे। तो लड़ाई अर्जुन, उस समय अर्जुन को शांति मिल रहा था कुरुक्षेत्र में, जब लड़ाई कर रहा था तब अर्जुन को क्या हो रहा था? शांत, वो बहुत ही उलझन में उसको भगवान डाल रहा था उस समय। और अर्जुन भगवान को निर्देश स्वीकार करके लड़ाई करना शुरू की, और लड़ाई जब कर रहे थे अर्जुन, तो क्या हुआ? भगवान अर्जुन को रक्षा किया हर स्थिति में। और उसके बाद भगवान अर्जुन को कैसा इनाम दिया? ऐसा इनाम दिया अर्जुन को ताकि आज तक भी सारा विश्व के आदमी उनको याद करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। अर्जुन जैसा बनने का, जो भला आदमी है, जो धार्मिक है, जो अपना जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, वो अर्जुन जैसे व्यक्ति का अनुसरण करते हैं। तो ये हमें विचार करना चाहिए, भगवान के सेवा के लिए जब अगर कोई तकलीफ भी आए तो उससे भी कोई हर्जा नहीं है, भगवान को सेवा करना ही चाहिए। और भगवान को सेवा में जब हम युक्त हो जाते हैं तो हम, हमारा मन शांत हो जाता है। देखिए ये जो विचार जो यहां हो रहा है, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या है? उनका प्रज्ञा मतलब ज्ञान स्थिर हो गए, और या वो उस असल ज्ञान में, दिव्य ज्ञान में स्थित हो गए। जो इस ज्ञान में स्थित हो जाते हैं तो उसका क्या होता है? उनका मन में कोई उलझन रहता है? कोई उलझन नहीं रहता, उसका मन शांत हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है। और भगवान के लिए जब सेवा करना शुरू करते हैं, भगवान को जब सेवा करते हैं, थोड़ा बहुत कठिनाई आता है, क्योंकि इस भौतिक जगत में तो कोई भी, किसी भी चीज, किसी भी कार्य हम बिना परेशानी से नहीं कर पाते हैं, है ना? हर कार्य करने में थोड़ा बहुत परेशानी आता है, और हम भगवान के लिए जितना ही करना चाहते हैं परेशानी उतना ही अधिक होगा। जैसे हम यह मंदिर बनाना चाहते हैं, मुझे मालूम है ये बहुत सारे परेशानी आएगा इसमें, पर फिर भी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि भगवान के लिए एक मंदिर होना चाहिए। आप लोग आ रहे हैं भगवान के पास, तो आप लोगों के लिए एक सुंदर मंदिर होना चाहिए, और जब सुंदर मंदिर बनेंगे तब और भी आदमी आएंगे, और भी आदमी आएंगे। और जब मंदिर में आएंगे तो क्या होगा? मंदिर में आने से भगवान के बारे में सुन सकेंगे भगवान के बारे में, उसको ज्ञान प्राप्ति होगा और भगवान के साथ संपर्क जोड़ने का मौका मिलेगा और उससे ही मनुष्य का जीवन सफल होता है। अगर ये भगवान के साथ हम संपर्क नहीं जोड़ सका, भगवान के साथ अगर हम संपर्क नहीं जोड़ा और उसके पहले मृत्यु मृत्यु हो गए हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए मृत्यु के पूर्व ये जो मौका जो हमें मिला है मनुष्य जीवन प्राप्ति के कारण, इसका पूर्ण फायदा उठाना चाहिए, इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। और फायदा हम कैसे उठाएंगे? भगवान को जानकर, भगवान के साथ संपर्क जोड़ना। वो संपर्क किसका संपर्क है? वो प्यार का संपर्क है। और भगवान हमारे सबसे प्यारे हैं, सब व्यक्ति के लिए ही सबसे प्यारे हैं परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। और भगवान के साथ जब हम संपर्क जोड़ लेते हैं तब क्या होता है? भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से क्या फायदा क्या होता है?
आनंद की वर्षा।
अच्छा, हाँ, आनंद की वर्षा होती है। और केवल इस जन्म में ही नहीं, मृत्यु के पश्चात भी वो आनंद का वर्षा बरसता रहता है और अंत में हम भगवान के पास, उनके धाम जो गोलोक वृंदावन है, वहां पर हम वापस जा सकते हैं। तो आप बताइए, भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ने का कोशिश करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। बहुत अच्छा। तो जितने सारे आदमी आएंगे और भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के साथ उनका संपर्क जोड़ने का तरीका मालूम हो जाएगा, उतना ही जगत का कल्याण होगा। तो शाम को मंदिर में आना चाहिए, सुबह मंदिर में आना चाहिए, दोपहर को मंदिर में आना चाहिए, हर समय भगवान को मंदिर में आना चाहिए। और आकर क्या करना चाहिए? आकर भगवान की कथा सुनना, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान को सेवा करना चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए, जो आप लोग कर रहे हैं। और उसके कारण हम आपसे बहुत आभारी हैं। हम थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं और आप लोग जो मदद दे रहे हैं उसके कारण ही सारे कार्य सफल हो रहे हैं। हरे कृष्ण। तो यहां भगवान का निर्देश क्या, भगवान कैसे वर्णन किया? जिस व्यक्ति का इंद्रिया अपने अपने विषय से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, अपना वश में इंद्रिया को लेते हैं, ऐसे क्या होता है? इंद्रिया हमको खींच के ले जा रहा है, परंतु हमको क्या करना चाहिए? इंद्रिया को वश में लाना चाहिए। इंद्रिया हमारा प्रभु नहीं है। जय श्री श्री राधा। प्रभु कौन है? हम है, ये हमारा शरीर है, हम है या हमारा इंद्रिया है? प्रभु कौन है? असल में हम प्रभु है, परंतु हम जब इंद्रिया को दास बन जाता है ऐसे, तब हम इस भौतिक जगत के बंधन में गिर जाते हैं, फंस जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इंद्रियों को अपने वश में लाना चाहिए। तो जो इंद्रिय को वश में लाता है उसको क्या कहा जाता है? गोस्वामी। गो का मतलब है इंद्रिया और स्वामी का मतलब क्या है? प्रभु, प्रभु मालिक, प्रभु जो अपना, प्रभु अपना दास को अपना वश में रखते हैं। तो ये गोस्वामी, और अगर नहीं अपने इंद्रियों को दमन नहीं कर सका तो हम क्या बन जाते हैं? गोदास बन जाते हैं, अपना इंद्रिय का दास बन जाते हैं। तो सही रूप से हमें इंद्रियों को दमन करना चाहिए, अपना वश में लाना चाहिए। इंद्रियानिन्द्रियाभ्यस्ते भस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। पहले भी भगवान बोले हैं क्या, वशे ही जस्य इंद्रियानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। जिसका इंद्रिय अपने वश में आ गए हैं उसका प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। और इंद्रिय को वश में लाने का अर्थ क्या होता है? विषय के प्रति, इस भौतिक जगत के प्रति इन हमारा चेतना को जाने नहीं देना, जाना रुकना उसको। इंद्रिय के द्वारा चल रहा है ना, और इंद्रिय के द्वारा हमारा चेतना विषय के प्रति भाग रहा है, परंतु उसको वश में लाकर हमें क्या करना चाहिए? कहाँ इंद्रियों को, तो कुछ इंद्रियों को लेकर कुछ करना चाहिए, नहीं तो इंद्रियां हमें बहुत सारे तकलीफ देते रहेंगे। तो क्या करना चाहिए? भगवान के सेवा में उसको लगाना चाहिए। हमारा जितने सारे इंद्रियां हैं उसको वश में हम कब ला सकते हैं? जब हम भगवान को वश सेवा में उसको लगाते हैं, नहीं तो इंद्रियों को वश में लाना बहुत कठिन है। आप सबको शायद मालूम है, याद है कि विश्वामित्र 64,000 साल तक तपस्या किया था, एकदम अपना एक कितना तपस्या किया था, उसका चेतना एकदम विषय से हटाकर विषय से खींचकर अपना हृदय के में स्थिर किया था, परंतु मेनका का थोड़ा सा घूंघट का आवाज उसके कान से प्रवेश किया, बस तपस्या भंग हो गए, टूट गए, और शकुंतला का जन्म हुआ। तो ये जो ऐसे इंद्रियों को वश में लाना बहुत कठिन है। देखिए विश्वामित्र जैसा तपस्वी, कितना बड़ा तपस्वी था, उसको अगर ऐसा हुआ तो मामूली इंसान का क्या बात है। परंतु जब हम भगवान को सेवा में लग जाते हैं, इंद्रिय के द्वारा भगवान को सेवा करना शुरू करते हैं, और उस सेवा से जब आनंद मिलता है, तब और इंद्रियां और विषय के प्रति आकृष्ट नहीं होता है, है ना। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? मैं केवल एक प्रश्न लूंगा, अगर किसी को कोई प्रश्न है।
कंट्रोल नहीं,
हाँ
डायवर्शन,
हाँ ठीक, सही बात है। उसको ऐसे वश में लाना कठिन है, परंतु जब भगवान को सेवा में लगाया जाता है तो वो वैसे ही स्वाभाविक रूप में ही वो वश में आ जाता है। तो आप बताइए असल गोस्वामी कौन है? क्यों है?
जो कि लोग याद कर लेते हैं इनकी को अपने
नहीं, असल गोस्वामी है वो जो भगवान को सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है तुलसीराम जी। तो आप सब गोस्वामी बन गए, गोस्वामी और गोस्वामिनी। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद। जय श्री श्री राधा मदन, जय श्री श्री गौ निताय की, जय श्री भगवान की, समवेत भक्त की, गौर प्रेमा।